अध्याय 23 गुजरात का चालुक्य वंश उत्पत्ति। साहित्य और अभिलेखों में चालुक्यों को चालुक्य, 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 चालक्य अथवा चुलुक भी कहा गया है। इसमें सबसे अधिक प्रचलित शब्द चालुक्य है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चालुक्य की उत्पत्ति आबू पर्वत पर किए गए वशिष्ठ के यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी, परंतु चालुक्य वंश के अभिलेख इन जनश्रुति की पुष्टि नहीं करते। महाराष्ट्र के धारवाड़ जिले में प्राप्त गोहाद नामक ग्राम में वीर नारायण मंदिर में एक अभिलेख मिला है। इसका कथन है कि चालुक्य वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के पुत्र अत्रि से हुई है। यह वंश चंद्रवंशी क्षत्रिय था। चालुक्य नरेश कुमारपाल का वडनगर प्रशस्ति का कथन है कि राक्षसों का संहार करने के लिए ब्रह्मा ने अपने चुलुक से एक वार को उत्पन्न किया जो चालुक्य कहलाया। हेमचंद के वाश्रम काव्य से भी सिद्ध होता है कि चालुक्य चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। मूलराज प्रथम 942 ईस्वी से 995 गुजरात के चालुक्य राजवंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसने अनेक समकालीन राजाओं से युद्ध किया। प्रतिहार वंश इस समय कन्नौज में प्रतिहार नरेश महिपाल शासन कर रहा था। सामंत धरणी वराह सौराष्ट्र में इसका गवर्नर था। मूलराज ने धरणी वराह को पराजित करके सौराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। कच्छ पर अधिकार। मूलराज ने कच्छ पर आक्रमण किया और इसके राजा लाखा को मारकर कच्छ पर अधिकार कर लिया। चहमानों से युद्ध शाकंबरी में चहमान विग्रहराज द्वितीय राज्य कर रहा था। इसने मूलराज पर आक्रमण किया और सारस्वत मंडल तथा लाट को पद्माकांत करता हुआ नर्मदा नदी तक पहुँच गया। हम्मीर महाकाव्य का उल्लेख है कि विग्रहराज ने मूलराज को मार डाला था, परंतु यह असत्य है। मूलराज ने भयभीत होकर विग्रहराज से संधि कर ली थी। चालुक्यों से युद्ध। कल्याणी में चालुक्य वंश के राजा तैलद्विती का राज्य था। इसने एक सामंत बारप्प ने भी मूलराज पर आक्रमण किया, परंतु उसे सफलता न मिली। युद्ध में वह मूलराज के पुत्र चामुंडराज द्वारा मारा गया। परमारों से युद्ध। मालवा के परमार नरेश मुंज ने मूलराज पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। मूलराज ने परिवार सहित मारवाड़ के मरुस्थल में शरण ली और उसकी सेना ने हस्तिकुंडी के राष्ट्रकूट नरेश धवल के राज्य में शरण ली, परंतु कुछ समय पश्चात मूलराज ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। कलचुरियों से युद्ध। इस समय त्रिपुरी में कलचुरी वंश का राज्य था। इसका राजा लक्ष्मण दास मूलराज का समकालीन था। लक्ष्मण राज ने मूलराज को पराजित किया। चामुंडराज 995 ईस्वी से 108 ईस्वी लगभग 995 ईस्वी में मूलराज ने सिंहासन छोड़ दिया और अपने पुत्र चामुंडराज को राजा बनाया। इसके शासनकाल में भी चालुक्यों की परमारों और कलचुरियों में शत्रुता चल रही थी। परमार नरेश सिंधु राजा ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु चामुंडराज ने उसे भगा दिया। सिंधुराज के पश्चात मालवा में भोज का राज्य हुआ। इसके शासन काल में चामुंडराज वाराणसी की तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से मालवा से होकर जा रहा था। भोज ने उसे रोक लिया और उसके वस्त्र आभूषण उतरवा लिए। कलचुरी नरेश कोक्कल द्वितीय ने गुजरात पर आक्रमण किया और चामुंडराज को पराजित किया। दुर्लभराज 108 ईस्वी से 122 ईस्वी तक। चामुंडराज के पश्चात उसका पुत्र दुर्लभराज राजा हुआ। नाडोल के चहमान राजा महेंद्र ने अपनी बहन का विवाह स्वयंवर प्रथा के अनुसार दुर्लभराज के साथ कर दिया। दुर्लभराज ने लाड नरेश भिरती राज चालुक्य को पराजित किया। भीमदेव प्रथम 122 ईस्वी में दुर्लभराज ने सिंहासन त्याग दिया और अपने भतीजे भीमदेव प्रथम को राजा बनाया। इसके शासन की सर्वप्रथम घटना महमूद गजनबी का आक्रमण था। भीमदेव ने आक्रमणकारी का सामना न किया और राजधानी छोड़कर भाग गया। महमूद ने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ डाला। कर्ण 164 ईस्वी में भीम ने सिंहासन छोड़ दिया और अपने पुत्र कर्ण को राजा बनाया। इसने 194 ईस्वी तक राज्य किया। इसने कल्याणी नरेश चालुक्य के सोमेश्वर द्वितीय की सहायता से मालवा पर आक्रमण किया और उसके राजा जयसिंह परमार को मारकर मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु जयसिंह के उत्तराधिकारी उद्यादित्य ने शाकंभरी नरेश विग्रहराज तृतीय की सहायता से कर्ण को पराजित कर मालवा पर पुनः अधिकार कर लिया। जयसिंह सिद्धराज कर्ण के पश्चात 194 ईस्वी में उसका पुत्र जयसिंह सिंहासन पर बैठा। उसने सिद्धराज की उपाधि धारण की। यह अपने समय का प्रसिद्ध योद्धा और कुशल शासक था। जिस समय जयसिंह सिंहासन पर बैठा उस समय वह अल्पवयस्क था, अतः उसने अपनी माता मैयानल देवी के संरक्षण में शासन करना प्रारंभ किया। नड्डूर के चहमानों से युद्ध। नड्डूर के चहमान नरेश जोजल ने जयसिंह पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी अनहिलवांड पर अधिकार कर लिया, परंतु यह अधिकार अल्पकालीन सिद्ध हुआ क्योंकि जयसिंह ने शीघ्र ही अपनी राजधानी पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। कुछ समय पश्चात नड्डूर का चहमान वंश गृह कला से निर्बल हो गया, जो जल्ल के पश्चात उसके भाई आशाराज और उसके भतीजे रत्नपाल में युद्ध हुआ। रत्नपाल ने नड्डूर पर अपना अधिकार जमा लिया। आशाराज ने के हाथ में बलि प्रदेश रह गया। चहमानों की इस निर्बलता से लाभ उठाकर जयसिंह सिद्धराज ने आशाराज को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। परमारों से युद्ध। जयसिंह ने मालवा के परमार नरेश नरवर्मन पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर बंदी बना लिया। नरवर्मन के पुत्र और उत्तराधिकारी यशोवर्मन के शासनकाल में भी परमार चालुक्य संघर्ष चलता रहा। इसमें जयसिंह की पुनः विजय हुई और उसने यशोवर्मन को परास्त कर मालवा पर अधिकार कर लिया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में जयसिंह ने अवननी नाथ की उपाधि धारण की। संभवतः यशोवर्मन के पुत्र तथा उत्तराधिकारी जयवर्मन ने जयसिंह के अधिकार से मालवा मुक्त कराया। शाकंभरी के चहमानों से युद्ध। इस समय शाकंभरी में आणोराज चहमान शासन कर रहा था। वह भी अपने समय का एक प्रसिद्ध तथा महत्वाकांक्षी राजा था। जैन ग्रंथों से प्रकट होता है कि जयसिंह ने आणोराज को पराजित किया। कालांतर में दोनों पक्षों में संधि हो गई और जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह आणोराज के साथ कर दिया। अन्य विजय। जयसिंह ने चंदेल नरेश मदन वर्मन को परास्त कर भिलसा छीन लिया। उसने आभी नरेश नवघन को भी पराजित किया। उसके सौराष्ट्र राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। विद्या प्रेम। जयसिंह सिद्धराज विद्या प्रेमी एवं विद्वानों का आश्रय दाता था। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचंद रहता था। विद्या प्रसार के लिए जयसिंह ने अनेक विद्यालयों की स्थापना की थी। धर्म। जयसिंह सिद्धराज शैव था। इसने सिद्धपुर नामक नगर में रुद्र महाकाल का एक मंदिर बनवाया। जयसिंह सिद्धराज ने 1143 ईस्वी तक राज्य किया। कुमारपाल। जयसिंह के कोई पुत्र न था। उसके पश्चात उसका एक संबंधी कुमारपाल राजा हुआ। कुमारपाल का प्रपितामह शेमराज बकुला देवी नामक एक नर्तकों से उत्पन्न हुआ था। इस कलंक के कारण जयसिंह कुमारपाल से घृणा करता था और उसे अपना उत्तराधिकारी न बनाना चाहता था। कुमारपाल चरित का कथन है कि जयसिंह कुमारपाल की सपरिवार हत्या करना चाहता था, परंतु कुमारपाल किसी प्रकार बचकर भाग गया। उसने अनेक वर्ष अज्ञातवास में व्यतीत किए। इसी अज्ञातवास में कुमारपाल हेमचंद नामक प्रसिद्ध जैनाचार्य से मिला। जैन ग्रंथों से प्रकट होता है कि हेमचंद ने कुमारपाल को राज्य प्राप्त करने में बड़ी सहायता दी। जयसिंह ने अपने मंत्री उदयन के पुत्र बाहड़ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु जयसिंह की मृत्यु पर कुमारपाल ने स्वयं राज्य पर अधिकार कर लिया। बाहड़ को राज्य छोड़कर भागना पड़ा। प्रबंध चिंतामणि से प्रकट होता है कि सिंहासनासीन होने के समय कुमारपाल की अवस्था 50 वर्ष की थी। उसने 1143 ईस्वी से 1171 ईस्वी तक राज्य किया। इसी ग्रंथ का कथन है कि सिंहासन पर बैठने के कुछ समय पश्चात ही अनेक मंत्रियों एवं सामंतों ने कुमारपाल की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। कुमारपाल को इसका पता चल गया और उसने सभी षड्यंत्रकारियों की हत्या कर दी। आणोराज से युद्ध। बाहड़ ने भागकर शाकंभरी के चहमान राजा आणोराज की शरण ली थी। आणोराज ने मालवा नरेश बल्लाल की सहायता से कुमारपाल पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध में कुमारपाल के धनुष से छूटा हुआ एक बाण आणोराज को लगा, जिससे आहत होकर वह गिर गया। इस प्रकार कुमारपाल की विजय हुई। आणोराज ने अपनी पुत्री का विवाह कुमारपाल से कर दिया। बल्लाल से युद्ध। बसंत विलास कीर्ति कौमोदी आदि ग्रंथों से प्रकट होता है कि कुमारपाल ने मालवा नरेश बल्लाल से भी युद्ध किया था और उसे परास्त कर दिया था। बल्लाल युद्ध में मारा गया था। भावनगर बड़नगर आदि शिलालेखों से भी इस कथन की पुष्टि होती है। इस विजय के परिणाम स्वरूप मालवा पर कुमारपाल का अधिकार हो गया। परमारों से युद्ध। कुमारपाल चरित का कथन है कि जिस समय कुमारपाल और आणोराज का युद्ध हो रहा था, उसी समय चंद्रावती के राजा विक्रम सिंह ने परमार ने कुमारपाल के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कुमारपाल ने उस पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर बंदी बना लिया। तत्पश्चात कुमारपाल चंद्रावती प्रदेश में यशोधवल को शासक नियुक्त किया। मल्लिकार्जुन से युद्ध। इस समय कोंकण में मल्लिकार्जुन नामक राजा शासन करता था। कुमारपाल चरित के अनुसार प्रथम युद्ध में मल्लिकार्जुन ने कुमारपाल के सेनापति आबंड को पराजित कर दिया। यह समाचार पाकर कुमारपाल ने अपने सेनापति की सहायता के लिए दूसरी सेना भेजी। इस बार आबंड की विजय हुई और युद्ध में उसने मल्लिकार्जुन का शीश काट दिया। आबू की तेजपाल प्रशस्ति के अनुसार इस युद्ध में चंद्रावती के राजा यशोधवल ने कुमारपाल की सहायता की थी। इस विजय के परिणाम स्वरूप कोंकण कुमारपाल के अधीन हो गया। सौराष्ट्र पर आक्रमण। सौराष्ट्र में सुंबर नामक राजा सिंहासनासीन था। प्रबंध चिंतामणि का कथन है कि कुमारपाल के महामात्य उदय ने सौराष्ट्र पर आक्रमण किया। युद्ध में उदयन घायल हो गया और शिविर में लाया गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। कुमारपाल चरित से ज्ञात होता है कि कुछ समय पश्चात कुमारपाल सुंबर को पराजित करने में सफल हुआ। उसने सुंबर के स्थान पर उसके पुत्र को सिंहासन पर बैठाया। सुंदाभिलेख से प्रकट होता है कि इस अभियान में कुमारपाल को नाडोल के चहमान राजा अहलादन से सहायता मिली थी। राज्य विस्तार। इस प्रकार अनेक विजयों के द्वारा कुमारपाल ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। महावीर चरित के वर्णन से प्रकट होता है कि कुमारपाल का राज्य उत्तर में तुर्षक देश तक, दक्षिण में विंध्याचल तक, पूर्व में गंगा नदी तक और पश्चिम में सिंधु नदी तक था। मेरुतुंग का कथन है कि कर्णाद, गुर्जर, लाट, सौराष्ट्र, कच्छ, सिंधु, मालवा, कीर, कोंकण, जांगल, सिंहादलक्ष, मेवाड़ और जालंधर के प्रदेश कुमारपाल की आज्ञा का पालन करते थे। इन कथनों पर अक्षरशः विश्वास नहीं किया जा सकता, परंतु इतना निश्चित है कि उसका राज्य चित्तौड़ से नर्मदा तक और काठियावाड़ से भिलसा तक विस्तृत था। धर्म। आचार्य हेमचंद के प्रभाव में कुमारपाल जैन हो गया था। जैन धर्म के प्रचार में भी उसने बड़ा कार्य किया। जैन ग्रंथों से प्रकट होता है उसने अपने राज्य में शिव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया। 1171 ईस्वी में कुमारपाल की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात कुछ अन्य राजाओं ने गुजरात में शासन किया, परंतु वे अधिक शक्तिशाली न थे। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी अहीनवांड को खूब लूटा।